पिछले अध्याय में आपने देखा कि मेहरा खानदान जयपुर पहुंच गया है और वेद बच्ची की मुस्कान में खोया हुआ है। मेहरा फैमिली लॉन में सजी महफिल में है, जहां शेखावत फैमिली भी है। वेद बच्ची और मानवी को तलाश रहा है। गेस्ट मेहरा फैमिली से मिलते हैं। हॉल में मौजूद लड़कियों की निगाहें वेद पर हैं, लेकिन उसकी निगाहें उस बच्ची पर हैं। वेद के पास एक लड़की आती है। वेद की नज़र बच्ची पर पड़ती है और वो तेज़ी से उस दिशा में बढ़ता है। माया निराश हो जाती है। सुधांशु और दीपक वेद से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। माया वेद को ड्रिंक के लिए राजी करने की सोचती है। वेद की आंखें लॉबी की तरफ उठ जाती हैं। रमेश और वेदांत वेद और माया को देख रहे हैं। वेदांत को विश्वास है कि माया अपना काम कर देगी। बलवंत मेहरा अपने बेटे वेद को लेकर परेशान है। रमेश और वेदांत बलवंत मेहरा के टेबल पर ध्यान दे रहे हैं। रूपा पूछती है कि रुचिका उनसे मिलने नहीं आई। रानी बताती है कि वो सुबह पहुंचेगी। डिनर खत्म हो चुका है। वेद बेचैन है। माया वेद के पीछे जाने की सोचती है। अब सुधीर के कमरे में वेद, दीपिका और सुधांशु हैं। सुधीर ने नीचे खाना खाने से मना कर दिया था। वेद दीपिका और सुधांशु से अच्छी तरह घुल मिल गया है, पर वेदांत से नहीं। सुधीर बताता है कि वो रुचिका से शादी नहीं करना चाहता, उस पर ज़बरदस्ती की जा रही है। वेद उसे सलाह देता है। माया वेदांत के कमरे के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। वेदांत कमरे में जाने के बजाय उस बच्ची से मिलना चाहता है। कॉरिडोर में वेदांत को रुचिका के पिता मिलते हैं। लॉबी में वेदांत मानवी को रीता के साथ खाना खाते हुए देखता है और उससे सुबह बात करने का सोचता है। माया वेद को नशीला पदार्थ पिलाने की योजना बना रही है। वेद मानवी पर नज़र रखने के लिए अंधेरे कोने में चला जाता है। माया वेद को फ़ोन करती है, पर वो ऊपर नहीं आता। वेदांत माया को इंतज़ार करने के लिए कहता है। पंडित जी की बात सच होती लग रही है। वेद को दो लड़कियां खतरों से बचाएंगी। नाउ नेक्स्ट। अवनी सो गई क्या? रीता ने मानवी से पूछा, क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ नहीं आई थी। जबकि इससे पहले जब वे दोनों काम कर रही थीं, तो अवनी पूरा दिन मानवी के साथ रहती थी और किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वो बिल्कुल तंग नहीं करती थी। इसीलिए मानवी भी आराम से अपना काम करती रहती और अवनी उसके पास खेलती रहती। हाँ, सो गई। मैंने उसे खाना भी जल्दी खिला दिया था। हाँ, वो भी थक जाती है पूरा दिन मेरे साथ भागते दौड़ते हुए, मानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम भी तो उसी के लिए काम कर रही हो। अगर उसका पिता होता तो शायद तुम्हें काम नहीं करना पड़ता, तुम आराम से उसे संभाल पाती, रीता ने धीरे से कहा। वो जानती थी कि मानवी ने उसके पैदा होने से लेकर उसे आज तक अकेले पाला है और उसके लिए हर वो चीज़ की है जो वो कर सकती थी। मानवी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अब तो उसकी स्कूल की भी प्रॉब्लम हो गई है। पहले मैं एक जगह काम करती थी तो उसे स्कूल भेज देती थी, लेकिन अब क्या करूँ? देखो, यहाँ तो बस कुछ दिनों का काम है और उसके बाद जहाँ पर शादी होगी हम वहीं चले जाएंगे। हाई प्रोफाइल वेडिंग प्लानर के साथ उसने काम शुरू किया था, तो वो उन्हें काम के लिए अलग अलग शहरों के लिए जाना पड़ता था, जिस वजह से वो एक जगह पर अवनी की एडमिशन नहीं करवा सकती थी और ना ही उसकी कमाई इतनी थी कि उसे हॉस्टल में छोड़ सके। इस बात को लेकर मानवी काफ़ी स्ट्रेस में थी। उसे अपनी बेटी की स्कूल जाने की काफ़ी फिक्र हो रही थी। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। और सच कहूँ रीता, मुझे अवनी की बहुत फिक्र हो रही है, मानवी ने अपने दिल की बात खुलकर बता दी। वो सचमुच अपनी बेटी को लेकर परेशान थी। रीता ही मानवी की एक ऐसी दोस्त थी जिसे उसकी हर तकलीफ में उसे साथ दिया था। जब से वो गांव छोड़कर मुंबई आई थी तो उसी के पास पहुंची थी और इतने सालों से दोनों साथ थीं। रीता की फैमिली में भी कोई नहीं था, तो इतने सालों में एक दूसरे का वो परिवार बन गई थी और हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ थीं। वेद लॉन में टहल रहा था। एक पल के लिए उसने नज़र दूसरी तरफ घुमाई और जब वापस मुड़ा तो देखा कि मानवी वहां नहीं थी। उसने पूरे लॉन में नज़र दौड़ाई, मगर कहीं भी मानवी दिखाई नहीं दी। वो कितनी देर से मानवी के इंतजार में ही वहां पर रुका हुआ था, मगर उसके पलक झपकते ही मानवी आंखों से ओझल हो गई थी। वो चाहता तो मानवी को वहीं जाकर मिल सकता था, मगर उन दोनों का रिश्ता नॉर्मल नहीं था और इस टाइम वो दूल्हे का भाई था। वो नहीं चाहता था कि कोई सीन क्रिएट हो। सबसे बड़ी बात, उसकी पूरी फैमिली वहां पर थी और एक गलती की वजह से वेद को जवाब देना मुश्किल हो जाता। चलो, इस लड़की से अब सुबह ही मिलूंगा, वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ कमरे में चला गया। तब तक माया भी वहां से जा चुकी थी। इस वक्त उसका इंतजार करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। कमरे में पहुंचते ही वेद नहाया, कपड़े बदले और फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट गया। वो वेद मेहरा जो हर रात सिर्फ लड़कियां और शराब के बारे में सोचता था, पिछले 5 साल से एक भी रात ऐसी नहीं होगी जब उसके बिस्तर पर कोई लड़की नहीं होती थी, मगर आज वो छोटी बच्ची के बारे में ही सोच रहा था। उसे न शराब याद थी न कोई लड़की। इधर बलवंत मेहरा, जिसे अपने बेटे की फिक्र थी, को वेदांत के बारे में हल्का सा शक होने लगा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो या किसी गुप्त काम में लगा हो। लेकिन क्या, ये वो नहीं जानता था और अपने भाई की बातों से तो उसे कभी भी शक नहीं हो सकता था। वेदांत के बारे में उसने ऑफिस में भी कई बातें सुनी हुई थीं, जिस वजह से बलवंत मेहरा अपने दिल से वेदांत को पसंद नहीं करता था। कमरे में आते ही बलवंत ने किसी को फ़ोन लगाया। जी कहिए सर, उधर से आवाज़ आई।
मैं तुम्हें अपने बेटे वेद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तुम उसे दूर से नजर में रखकर प्रोटेक्ट करोगे। उसके किसी भी काम में दखल नहीं देना है। जो भी करे उसे करने देना, बस ध्यान रहे कोई बाहर का आदमी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अगर कभी तुम्हें लगे कि उसे मदद की जरूरत है तो तुम लोग करोगे, और मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। तुम लोग उसके आसपास हो, इस बात की भनक उसको से ना लगे, बलवंत ने सामने वाले आदमी को समझाया। ठीक है सर, जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे, सामने से जवाब आया। अपने भरोसेमंद आदमी राणा को जिम्मेदारी सौंपने के बाद बलवंत की थोड़ी चिंता कम हुई, मगर उसका मन अब भी वेद के बारे में ही सोच रहा था। वो जानता था अगर वो सीधे वेद से बात करेगा तो वेद को लगेगा कि बलवंत उसे बांध कर रखना चाहता है, और हो सकता है इस बात से वो नाराज होकर फिर विदेश चला जाए। इसीलिए बलवंत ने इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने का फैसला किया। उधर वेदिका, जो कपड़े बदलकर कमरे में पहुंची थी, उसने बलवंत को किसी गहरी सोच में डूबा देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, आप इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं देख रही हूँ कुछ तो है, वेदिका ने चिढ़ाते हुए कहा। बलवंत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं सोच रहा था मेरी बीवी पर उम्र का कोई असर नहीं हुआ, आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी पहले लगती थी, आज सभी से खूबसूरत तुम लग रही थी। पहले अपनी उम्र देखिए और फिर ये हरकतें, वेदिका ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आपका बेटा शादी लायक हो चुका है। बेटे की शादी, मैं तो राजी हूँ, लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, बलवंत ने हंसते हुए कहा। दोनों एक दूसरे से मजाक करने लगे, बलवंत को सचमुच वेदिका से बेहद प्यार था। इधर कमरे में ब्रजेश मेहरा मौली से नाराज हो रहा था। चाहे मैंने आज सुधीर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कमरे में रहने को कहा तो मैं मान गया, मगर मैं देख रहा हूँ उसकी हरकतें ठीक नहीं है, लड़की वाले क्या सोचेंगे कि दूल्हा खुद ही नहीं आया? मौली ने तुरंत पूछा, वो लड़की कौन थी जो आप मेरे बेटे को कह रहे हैं?
नहीं मौली, तुम मुझसे बात करो, कल सब ठीक होना चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जिससे शादी में किसी का मूड खराब हो, ब्रजेश ने कहा। ब्रजेश का स्वभाव थोड़ा नरम था, वो चाहे जैसा भी था बच्चों पर उसने कभी ज्यादा सख्ती नहीं की थी। रीना देख रही थी कि वेदांत अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उसका भी मूड खराब था, इसलिए वो खाने के लिए नीचे नहीं गई। उसने सेहत का बहाना बनाकर रूम में ही खाना मंगवा लिया। वो वेदांत से बात करना चाहती थी, मगर उसका उठता हुआ मूड देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे भी वेद को उसकी परवाह कब थी, कभी उसने रीना की परवाह नहीं की। आज रात माया की जो योजना थी वो पूरी नहीं हो सकी थी, और शायद यही कारण था कि वेदांत के मूड में चुप्पी छाई हुई थी। क्या बलवंत मेहरा अपने बेटे को हर खतरे से बचा पाएगा? क्या मौली सुधीर से सीधे बात करेगी? क्या रीना और वेदांत के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी? कमेंट में बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें आगे लिखने की प्रेरणा देते हैं।